ये बोल बड़े अनमोल। 1865 अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको मार दिया गया था, असैसिनेशन। 100 वर्ष इस घटना को पूरे हुए और अमेरिका ने सोचा कि देश का जो सबसे महान नेता था, सबसे महान जो पुरुष था, उसके उपलक्ष्य में कुछ किया जाए। वर्ष भर का आयोजन का निर्णय लिया गया और उस आयोजन में एक नाटक का प्रस्ताव था जिसमें अब्राहम लिंकन के पूरे जीवन को दर्शाया जाए, और ऐसे व्यक्ति को ढूंढा गया जो अब्राहम लिंकन जैसा दिखता है, ताकि वो अब्राहम लिंकन का पार्ट उस नाटक में अदा कर सके। बहुत ढूंढने के बाद एक व्यक्ति मिला जो बिल्कुल अब्राहम लिंकन जैसा दिखता था, बोलता भी लगभग वैसा ही था। उसे और प्रशिक्षित किया गया, वर्ष भर वो नाटक हुआ। कभी कभी दिन में 2-2 शो, वो दिन भर वही वस्त्र पहन के रहता, वही सारे डायलॉग्स बोलता, दिन में कई बार 2-2 बार उसे मरना होता, क्योंकि मूल कहानी में अब्राहम लिंकन को मारा गया था। ऐसा करते करते पूरे अमेरिका के कई जगह पर नाटक हुए, असंख्य नाटक हुए, और फिर एक वर्ष बाद ये सारे समारोह समाप्त हुए। परंतु ये सारे नाटक समाप्त होने के बाद भी वो व्यक्ति कहता है कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। लोगों ने उसे समझाया, अभी नाटक पूरा हुआ। वो कहता है, नाटक पूरा हुआ तो क्या हुआ, पर मैं तो अब्राहम लिंकन हूं। लोगों को लगा मजाक कर रहा है। 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो अभी तक वही वस्त्र धारण किए हुए, अभी तक वही छड़ी लेके घूम रहा है, और अभी तक उसके टोन भी वैसा ही है जैसा अब्राहम लिंकन था का था। वो वही घूम रहा है और सबको यही बताते फिर रहा है कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। घर आया, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को उसने इनकार कर दिया कि इन्हें मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं तो अब्राहम लिंकन हूं। वो दिन रात उसी चिंतन में रहा था और 1 वर्ष तक उसी चिंतन में रहा था। अब इट स्टार्टेड बिकमिंग अ सीरियस कंसर्न। लोगों को लगा क्या किया जाए। चिकित्सकों के पास लेके गए उसको, मनोचिकित्सकों के पास लेके गए, परंतु कोई उसे ये कन्विंस नहीं कर पाया कि तुम अब्राहम लिंकन नहीं हो। क्या किया जाए, सारे उपाय करके हो गए और उसके रग रग में यह समा गया कि मैं ही अब्राहम लिंकन हूं। अंततो गत्वा एक परीक्षण से उसे गुजारा गया। एक मशीन होती है जिसको कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, लाई डिटेक्टर मशीन। उस मशीन में आपको बिठाया जाता है और पहले सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, तुम कौन हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, न्यूट्रल क्वेश्चंस। और प्रश्न पूछते पूछते अचानक वो प्रश्न पूछा जाता है जो मूल प्रश्न है, और यदि व्यक्ति ने झूठ बोला तो हृदय की धड़कन में, गतिविधि में थोड़ा बदलाव होता है और वो मशीन तुरंत डिटेक्ट कर लेती है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसे कहते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, लाई डिटेक्टर मशीन। सोचो यदि हमको उस मशीन पर बिठाया गया और हमें अपने जीवन के प्रश्न पूछे गए और कोई फिर मुख्य प्रश्न पूछा गया जिसके लिए हम दावा करते हैं कि वो हम हैं, और यदि हमने कहा हम हैं तो वो मशीन तुरंत पकड़ लेगी। उस व्यक्ति को वहां बिठाया गया, इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उसे प्रश्न पूछे गए, तुम स्त्री हो या पुरुष, उत्तर देता गया। ऐसे 10-12 प्रश्न पूछने के बाद एकाएक उसे पूछा गया, क्या तुम अब्राहम लिंकन हो? वो व्यक्ति पहले इतना परेशान हो चुका था लोगों को बता बता के कि मैं अब्राहम लिंकन हूं, पर लोग मानने को तैयार नहीं, इसलिए उसने कहा मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, मशीन ने डिटेक्ट किया ये झूठ बोल रहा है, अर्थात वो अब्राहम लिंकन ही है। एक वर्ष तक बस एक ही संकल्प पे वो जिया कि मैं अब्राहम लिंकन हूं, और वो इतना गहरा चला गया, इतना गहरा चला गया कि अब मशीन भी कहती है कि वही है। जन जन से हमें भी एक ही अभ्यास हुआ है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, और यह अभ्यास भी इतना गहरा हो गया है कि यही एक अभ्यास यही एक भाव यही एक मान्यता हमारे रग रग में समा गई और हमारा सारा जीवन उसी के आधार पर चल रहा है। अब भगवान आया है, जो हम हिप्नोटाइज्ड हो गए थे, हमें डी हिप्नोटाइज्ड करने के लिए। सुबह की अव्यक्त वाणी एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है समय के संबंध में। कौन सा इस समय समय तुम्हारा साथी है, इस समय समय तुम्हारा साथी है। समय कौन सा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों यहां है, स्वयं से बातें करनी है। संसार की दौड़ में भागते भागते न मालूम कहां खो गए, या फिर जिसे हम सेवा समझ रहे हैं वो सेवा ही कहीं भार तो नहीं हो गया, वो सेवा ही कोई विकर्षण तो नहीं हो गया, डिस्ट्रैक्शन, वो सेवा ही ज्ञान और योग से भटकाने का कारण तो नहीं हो गया। स्वयं से बातें करनी है। स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझना है कि यहां इस समय आने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए यदि यहां आकर कुछ पाना है तो सबसे पहला नियम चुप हो जाना। संपूर्ण अंतर्मुक्ता में ही आत्मा का अनुभव होता है। सबसे पहला नियम चुप, पूर्ण मौन, आर्य मौन, संपूर्ण मौन। जो कारोबार में नहीं है और जो चुप रह सकते हैं जब तक इस भूमि पर है तब तक मुख बंद कर देना है, उस परम मौन की गुफा में ही अध्यात्म के अनुभव होंगे। यहां आकर भी अगर सुबह से लेकर रात तक केवल बोलना और बाह्य मुक्ता के रस में ही है तो फिर यहां आना एक पिकनिक मात्र होगा, ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी सफाई होगी, भीतर गहरे में अंतकरण में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्य तो सारा भीतर करना है। कितने घाव है जो अब तक भी नासूर हो चुके हैं, बह रहे हैं, रक्त तो बह रहा है, कितने अनहील्ड इमोशंस, कितनी कड़वाहट, कितना द्वंद जो भीतर चल रहा है, कैसे हम उसे देख पाएंगे। इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं उन सब बातों को बाजू में कर सोचो, ये भट्टी केवल मेरे लिए है और मेरे जीवन का ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। ऐसा टर्निंग पॉइंट कि यहां आने से पहले तक का जीवन कुछ और था, यहां आने के बाद का जीवन कुछ और होगा। इसलिए मौन। दूसरा नियम, मोबाइल बंद, स्विच्ड ऑफ। कुछ दिनों के लिए जब तक यहां है तब तक उस दुनिया से कट ऑफ। तीसरा, इस परिसर में स्वयं को कैद कर देना है। चौथा, नजर नीचे, आंखें नीचे, चलते फिरते केवल एक की याद, एक का स्मरण, शिवमयी स्थिति। यदि ये नहीं करते हैं तो यहां आकर अनुभव तो होगा शांति का, अशरीरीपन का, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, परंतु वो कुछ दिनों के लिए रहेगी, एक हफ्ता, 10 दिन, 1 मास, बस। फिर यहां आना केवल एक यादगार रह जाएगा दूसरों को सुनाने के लिए। यहां आए हैं तपस्या करने, यहां आए हैं योग की अग्नि में पिघलने, वही करना है जो करने आए हैं। दूसरा क्या करता है, दूसरे ने क्या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। सुबह से लेकर रात तक स्वयं में डूबे रहना है। उस एकांत में और एकाकी अवस्था में कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो अविनाशी हो जाएंगे, और उन अविनाशी अनुभवों को दूसरों से इतना जल्दी शेयर साझा भी नहीं करना है। अनुभव शक्ति बन जाए उसके लिए वो भीतर समाया हुआ हो। यहाँ बैठते बैठते सारे दिन भर कई सारी ज्ञान की बातें आप लोग सुन रहे होंगे, पर लक्ष्य सुनना नहीं है केवल, लक्ष्य सुनते सुनते ही अपने ही जीवन में डुबकी लगानी है, अपने ही जीवन को आंखों के सामने आर पार देखना है। मैं कहाँ खड़ा हूं, आत्मिक स्थिति में मेरी उन्नति कितनी है, प्रभु प्रेम में कितना आगे बढ़ रहा हूं, मेरे भीतर कितनी स्वच्छता आई है, कितना निष्कलंक चरित्र हो रहा है। जीवन के जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब तक नहीं मिला और जिसका उत्तर हम सबसे पूछते फिरते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी भट्टी में मिलेगा, और वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलेगा, किसी की क्लास के द्वारा नहीं मिलेगा, वो हमारे ही भीतर है और हमारे ही अंतस से वो मिलेगा। केवल करना मात्र इतना है, चुप हो जाना। तपस्या की ऐसी भीतर आग प्रज्वलित करनी है कि दूसरा कुछ करना ही नहीं। नियति ने अवसर दिया है, संगम युग किसी समय का नाम नहीं है, अवसर का नाम है शुद्ध होने के लिए। जो अवसर प्राप्त हुआ है उस अवसर का नाम, दैट अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड संगम युग। कोई समय नहीं है ये, दिस मोमेंट। संगम युग का संबंध समय से नहीं, श्वास से है। योग का संबंध क्रिया से नहीं, भीतर बह रहे मौन के प्रवाह से जुड़े रहने का। हर एक के भीतर एक मौन प्रवाह बह रहा है और हम उस प्रवाह से कटे हुए, क्यों? वाचा, बोल। श्री स्थिर और भीतर बह रहे उस मौन से जुड़ेंगे। 1970s में मध्य प्रदेश में जब एक साथ डाकुओं के पूरे समूह ने आत्मसमर्पण किया था जयप्रकाश नारायण के समय, तब ब्रह्मा कुमारी इसके भाई बहनों ने उन डाकुओं से मुलाकात की थी 1970s में, 74-75 शायद। उन डाकुओं ने एक बात कही थी, हमें कभी भी भीतर से ये पसंद नहीं आता था किसी का घर लूटना, किसी को दुख देना, किसी को रोता बिलकता छोड़ना। भीतर से निरंतर एक आवाज थी, ये सब नहीं करना है जो मैं कर रहा हूं, मुझे कुछ और करना है। परंतु समय, परिस्थिति, बचपन, घटनाएं, ये सब ने हमें मजबूर किया था कि हम डाकू बन जाए। क्या ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे साथ भी नहीं है? हम भी चाहते हैं कि हम बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें, बहुत ऊंचाई में जाए, उस परमात्म प्रेम का गहराई से अनुभव करें। जितनी उस प्रेम की गहराई, उतनी स्थिति की ऊंचाई। परंतु समय, परिस्थिति, सेवाएं, ये सब कहीं ना कहीं कारण बना है जो हमें वो नहीं करने दे रही जो हम करना चाहते हैं। इसलिए इस भट्टी में आना, एक एक सेकंड को सफल करना है, क्षण क्षण का ब्रह्मचर्य पवित्रता की इमारत को खड़ा करेगा। अविरल धारा प्रवाह याद, और कुछ करना ही नहीं। अपनी स्थिति को इतना ऊंचा ले जाना है, इतना ऊंचा। और जैसे ही हम किसी और को देखते हैं और कुछ बोलते हैं, जब जब किसी की निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, आज की मुरली में कहा ईर्ष्या, जेलसी, दो बच्चे हैं क्रोध के, ये कार्य सुबह से चालू करना है। वहां कितने बजे उठते थे वो भूल जाओ, यहां जब वायुमंडल साथ है, तपस्या के प्रकंपन है, सुबह उठो। 2 से 5 के बीच 3 घंटा अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है। इन्हीं 3 घंटों में जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ये करूं या वो करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, इससे पूछूं या उससे पूछूं, किसी से कुछ भी पूछना नहीं है। मैं हरेक में परमात्म शक्तियां है। सुबह मुरली में कहा, अनाउंस करो दुनिया के सामने, हम परमात्म बच्चे हैं। अनंत शक्तियां भीतर समाई हुई है, उन शक्तियों को देखना, अनुभव करना। तो जितना हो सके जल्दी सो जाना, 1:30 और 2 के बीच रात के सन्नाटे में, चाहे बारिश हो या तूफान हो, आलस की काली चादर को फाड़कर नींद विष की तरह लगे, सारे स्वप्न जहरीले लगे। बाजू करो, उठो। आवाज को सुनो, ईश्वरीय आवाज को। दिन भर वो आवाज धुंधली दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, समझ नहीं आती। वो समय है जब डायरेक्ट टचिंग होगी, डबल विदेशियों से मुलाकात, एक अव्यक्त वाणी है। डबल विदेशियों ने प्रश्न पूछा बाबा को, ये कैसे माने कि जो मुझे टच हो रहा है वो मेरी अपनी विचारधारा है या तुम्हारी टचिंग है, ये कैसे माने। लोग आते हैं मधुबन में, कहते हैं बाबा ने हमें टच कराया, वो वास्तव में बाबा की टचिंग कम, 99% वो स्वयं के ही विचारों का प्रोजेक्शन होता है। बाबा ने उत्तर दिया, अगर ये तीन बातें हैं तो समझना ये बाबा की टचिंग है। PSC, पी पावरफुल। जब भगवान की टचिंग होगी तो इतनी शक्तिशाली होगी कि मेरे जो विचार है, मेरी जो धारणाएं हैं, मेरी जो क्षमता है विचार की, उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली वो होगा, वो विचार, वो संकल्प। अमृत वेले उठने वाला हर विचार, हर संकल्प परमात्मा उपहार है। एक शक्तिशाली, दूसरा S और तीसरा C। C अर्थात क्लियर, क्लैरिटी। इतना स्पष्ट होगा कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यदि वो बाबा की टचिंग है तो। और S लास्ट में, ये हो ही नहीं सकता कि यदि वो भगवान की टचिंग है उसमें सफलता ना हो, सक्सेस। यदि वो टचिंग पावरफुल है, वो क्लियर है और उसमें सक्सेस होता है, तो समझना ये बाबा ने टच कराया था। और भगवान टच तभी कराएगा जब बुद्धि हमारी खाली है, रिक्त है, शून्य है, उसमें कचरा नहीं है। और कचरा भरता है पर चिंतन और पर दर्शन से। आज के सत्र में हम ऐसी 20 बातें देखेंगे, आज की 20 तारीख है। स्व दर्शन से क्या होता है? सबसे पहला, जागरूकता। जितना हम स्व के चिंतन में रहेंगे, जरूरी नहीं स्वचिंतन अर्थात केवल आत्मिक चिंतन में ही है, स्वचिंतन अर्थात अपने जीवन के चिंतन में, स्वचिंतन अर्थात अपने सारे अतीत को अपनी आंखों के सामने देखना, तटस्थ भाव से साक्षी होकर देखना। एक सन्यासी खड़ा है एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, तीन व्यक्ति उसे देखकर कहते हैं, ये यहां क्यों खड़ा है? पहला व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है हो सकता है इसकी गाय खो गई है, उस गाय को वो ढूंढ रहा है, इसलिए इस पहाड़ी के चोटी पर ये खड़ा है। दूसरा कहता है, नहीं नहीं देखो उसकी आंखें बंद है, मुझे लगता है वो किसी का इंतजार कर रहा है, हो सकता है उसका कोई दोस्त है जो आने वाला है। तीसरा कहता है, ना ना अगर ऐसा होता वो पीछे मुड़ के देखता, पीछे एक बार भी उसने मुड़ के नहीं देखा, मुझे लगता है वो भगवान को याद कर रहा है। और विवाद तेज हो जाता है। पहला कहता है गाय का इंतजार कर रहा है, गाय को ढूंढ रहा है। दूसरा कहता है अपने मित्र का इंतजार कर रहा है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि ये सन्यासी भगवान का स्मरण कर रहा है। अंततः वो सन्यासी के ही पास जाके पूछते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो भिक्षुक कुछ कहता, पहला व्यक्ति कहता है, जरूर आपकी कोई गाय खो गई होगी जिसे आप ढूंढ रहे हो। वो व्यक्ति कहता है, मेरे पास कोई गाय ही नहीं है, मैं किसको ढूंढूं? मेरे पास मेरे कहने जैसा कुछ है ही नहीं, न कमाने की चिंता, न छिपाने का डर। दूसरा व्यक्ति कहता है, जरूर आप अपने मित्र को ढूंढ रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। वो कहता है, ना मेरा कोई मित्र है ना कोई मेरा शत्रु है। शत्रु उसके होते हैं जिसके मित्र होते हैं। तीसरा व्यक्ति कहता, मैंने कहा था ना जरूर आप भगवान को याद कर रहे होंगे। वो कहता है, ना मैं भगवान को याद नहीं कर रहा हूं। उसे पूछते, फिर आप कर क्या रहे थे? वो कहता है, मैं केवल खड़ा हूं, साक्षी हूं। आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन अवेयरनेस। वो तीनों व्यक्ति कहते, ये क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा है। अर्थात क्या वो व्यक्ति कह रहा है? मैं केवल देख रहा हूं, साक्षी होकर, तटस्थ भाव से। एक साक्षी के तीन तल है, एक शरीर के साक्षी। कभी कभी बैठ जाओ एक घंटा आंखें बंद करके, बिना हिले डुले केवल ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर को देखो, क्या चल रहा है। हलचल नहीं, हलन चलन नहीं। दूसरा, मन की हलचल को देखते रहना, करना कुछ नहीं। और तीसरा, आत्मा के साक्षी, तटस्थ भाव से अपने सारे जीवन को देख लेना, उसमें ये हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, टच नहीं करना, कुछ सुधारने की कोशिश नहीं करना, केवल देखना। हृदय में इतने घाव है, दूसरों के दिए हुए, खुद हमारे अपने दिए हुए, उन्हें प्रेम की दृष्टि चाहिए, केवल तब वो हील होंगे, तब तक नहीं। तो सबसे पहला, जितना जितना हम अंतर्मुखता में डूबते हैं, जितना जितना मौन में प्रवेश करते हैं, उतना उतना जागरूकता बढ़ती है। किस विषय में जागरूकता? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं का उत्तर मैं आत्मा हूं बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या करना है? मैं क्यों यहां हूं? क्यों यह जीवन चल रहा है? 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल से योग करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, मुरलियां पढ़ रहे, पढ़ा रहे, क्लासेस कर रहे, क्लासेस सुन रहे, परंतु स्थिति वही की वही है। क्यों? सब कुछ है, एक चीज छोड़कर, अनुभव। आज सुबह की मुरली में भी भक्तों ने देखा, तुमने अनुभव किया। और अनुभव किसी अज्ञात क्षण में होगा। अध्यात्म में प्राप्ति पुरुषार्थ से कभी नहीं होती, अचानक, सडन, अनअवेयर्स। केवल हमें तैयार रहना है। हो सकता है वो क्रांति का पल अभी हो, हो सकता है किसी के शब्द हमारे जीवन की उस 10 साल पुरानी कमजोरी को समाप्त कर दे। और वो शब्द कहीं से भी आ सकता है, छोटे से बालक से आ सकता है, किसी अज्ञात व्यक्ति से आ सकता है। हो सकता है कि वो यहां इस हॉल में बिल्कुल न मिले। केवल तैयार, सुबह से लेकर रात तक, आज भी, अभी से, जहां अभी बैठे हैं, वही संपूर्ण सजगता में बैठ जाओ। हो सकता है अचानक कहीं से कोई किरण उतर के आए और हमारे सबसे गहरे दुख को चीर दे, खत्म कर दे। एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नया उत्साह, सुबह कान्हा बाबा ने गिफ्ट दो उमंग उत्साह से, मन के उमंग से बाप को ये गिफ्ट दो, व्रत क्रोध से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त। जितना जितना स्वदर्शन में रहेंगे उतनी जागरूकता बढ़ेगी, ये पहला। दूसरा, जीवन में संतुलन आएगा। एक तरफ सेवा, एक तरफ साधना, दो सुरों में जीवन जैसे बटा है। स्वदर्शन वो बांसुरी है जहां दोनों सुर संतुलित होते हैं। सेवा में भागते हैं तो साधना छूटती है, साधना में जाते हैं तो सेवा करने की इच्छा नहीं होती। क्या किया जाए, वो संतुलन कैसे आए, उसके लिए ये सुबह के 3 घंटा शक्तिशाली। चाहे बारिश होने दो, आंधी होने दो, तूफान होने दो, फैन है फैन नहीं है, कूलर है कूलर नहीं है, एसी है एसी नहीं है, सुविधाएं है सुविधाएं नहीं है। भगवान की पालना सुख सुविधाएं नहीं है, वो आज है कल नहीं रहेगी। भगवान की पालना हम किसको कहते हैं? यहां आए और बहुत पालना मिली, बहुत पालना मिली अर्थात क्या? अच्छा कमरा मिला, बहुत पालना मिली अर्थात क्या? खाने पीने को अच्छा मिला, वो पालना है क्या? इसको हम पालना कहते? परमात्मा पालना अर्थात परमात्मा अनुभव, आत्मा शक्तिशाली तप से होती है, सुख सुविधाओं से नहीं। यहां तप करने आए हैं, और जिसने मन ही मन ये संकल्प कर लिया है, संकल्प सृष्टि का बीज है। एक संकल्प पूरी सृष्टि को स्पर्श कर सकता है। कितनी सारी अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने केवल और केवल मनसा सेवा करने को कहा है, बाकी सब रखो बाजू में। वो सेवा जो डिस्टर्ब कर रही है वो सेवा है ही नहीं, वो सेवा जिसमें खुशी ही खत्म हो रही है वो खुशी वो सेवा है ही नहीं, वो सेवा जो विकर्षण का कारण है, डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है, वो सेवा है ही नहीं। वो सेवा जहां पर बोझ लग रहा है, भार लग रहा है, चिंता है, तनाव है, वैराग्य ही नष्ट हो रहा है, जहां प्रसिद्धि की भूख जागी है भीतर, क्या यह सेवा है? क्या इसलिए आए थे? स्वदर्शन वो झरोका है जिससे हम स्व के अंदर झांकेंगे। क्यों अब तक भी अमृत वेला स्थिर नहीं हो पाया? स्वयं से प्रश्न पूछो। वो व्यक्ति दिन रात बस एक ही चिंतन में रहा, मैं अब्राहम लिंकन हूं, कि लाई डिटेक्टर मशीन को भी कहना पड़ा कि वही है। क्या मेरा और भगवान का रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी को कॉल करना पड़ता है, किसी को उठाना पड़ता है, किसी ट्रैफिक कंट्रोल को लगाना पड़ता है, किसी अलार्म की जरूरत है घड़ी की? इतने समय से चल रहे हैं, इतने वर्ष हो गए तपस्या कर रहे, इतने वर्षों से मुरलियां सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, क्लास कर रहे, क्लास करा रहे, भट्टी कर रहे, भट्टी करा रहे, कितनी डायरिया भर दी, कितने टॉपिक्स पर भाषण कर लिए, क्यों? कहां गलती हो रही है? स्टॉप, स्टैच्यू, पॉज, बाकी सब बाजू में रखो, ये ठीक करो। इतने वर्ष हो गए, दिन रात मुरलियों में आता है भाप, तुम्हारे सामने भीख मांगता है पवित्र बनो, फिर भी ये देह ये देह का स्पर्श, देह का आलिंगन, ये सुंदर दिखने की प्यास गई नहीं। क्यों? क्यों ब्रह्मचर्य अपनी निष्कलंक शिखर तक नहीं पहुंचा है? संतुलन, तीसरा कंट्रोल, स्वयं इंद्रियों पर संयम। जो यहां राजा वो वहां राजा, और सारी इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली इंद्रिय आंखें, जो डूबती है वैभव को देखकर, पैसे को देखकर, रूप को देखकर, जिह्वा मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात भूख, स्वाद और रस से परे। इस संसार का कोई भी रस हमें आकर्षित न करे, ऐसी साधना हमने क्यों नहीं की? कंट्रोल, सभी इंद्रियों पर संयम। चौथा विरक्ति, डिटैचमेंट। जितना जितना हम भीतर जाते जाएंगे, अभी अटैच्ड है, अपनी ही सेवाओं ने अटैच कर रखा है, जो जो क्रिएट किया उसको अटैच किया है, जो सेंटर बनाया उससे अटैच्ड, जिस कुमार कुमारी को तैयार किया उसको अटैच्ड, जो सेवाएं की उससे अटैच्ड, जो भाषण दिए उससे अटैच्ड। व्यक्ति का स्वभाव है कि जो वो निर्माण करता है उससे अटैच हो जाता है। बच्चों को तैयार किया उनसे अटैच्ड। ये यात्रा अकेले की है, कौन बच्चा और किसका बच्चा, कौन माँ और किसकी माँ। जीसस क्राइस्ट की माँ आती है, उसके साथ लोग बैठे हुए हैं, एक आके कहता है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो कहता है हुज मदर, विच मदर, आई हैव नो मदर, दीज आर माई मदर्स एंड दीज आर माई ब्रदर्स। ये वो व्यक्ति कहता है जिसने कहा है लव इज गॉड, जिसके हृदय में इतनी करुणा है, एक तरफ इतनी करुणा, इतना प्रेम, आज सुबह की मुरली मर्सी की धुन, तो दूसरी तरफ संपूर्ण अनासक्त है। आंखें लौकिक संबंधों को नहीं देख रही है, ज्ञान में चल रहे हैं, पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है, पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माँ से, बहन से, बाप से, बेटे से। गहरी आसक्तियां, वैसी ही आसक्तियां जो इवन संसार के लोगों में इतनी आसक्तियां नहीं है, उतनी ब्राह्मणों में हमने देखी है। ये कैसा तप, कैसी तपस्या है? निर्मोही चेतना, ये लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का। और जब तक मोह नहीं हटता, ये ज्ञान समझ में ही नहीं आता क्या है। ये ज्ञान इतनी ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना फिलोसॉफिकल, इतना हाई लेवल का है। सुनाने वाला यहां है, हम यहां हैं, कैसे पकड़े? केवल शब्द पकड़ में आते हैं, रट सकते हैं, क्लास करा सकते हैं, अनुभव नहीं। जितना स्व का दर्शन होगा उतना डिटैचमेंट आएगा, नहीं तो अटैचमेंट। काम को जितना आसान है, अटैचमेंट अध्यात्म के जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। मैं, मेरा, मेरी एरिया मुरलियों में आया है। अगला, एक एनर्जी शील्ड, पूरे दिन भर में अगर यदि हम अपने आप को देखो तो हजारों लोगों के संपर्क में आना पड़ता है और उनके वाइब्रेशंस हमें प्रभावित करते हैं। एक चिकित्सक के लिए कहा जाता है, एक चिकित्सक जब रोगियों को देखता है तो रोगी निगेटिव वाइब्रेशंस लेके आता है और अपने वाइब्रेशंस छोड़ कर जाता है, चिकित्सक को प्रभावित करते हैं। उसे अपने इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करना होता है जिसमें कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आह, कोई दर्द प्रवेश न कर सके। सुबह की मुरली में बहुत अच्छी एक बात बाबा ने कही है, दुख देते तो नहीं है पर करते क्या है, दुख ले लेते हैं। मिस्टर टच मी नॉट, मिस टच मी नॉट, मुझे बुरा लग गया .com। दर्द महल, पुराने जमाने में विष कन्याएं होती थी, अभी है आंसू कन्या, आंसू कुमार। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कमेंट कर दिया, निंदा कर दी, ग्लानी कर दी, अपमान कर दिया, आलोचना कर दी, तीर सीधा इधर। स्तुति में कितनी खुशी मिलती है, आहा, अंदर ही अंदर क्या होता है। जिसे स्तुति में जितनी अधिक खुशी मिलती है, निंदा में वो उतना दुखी होगा। छुई मुई, फीलिंग देवी, रिएक्शन देवी, रोनीता, आंसू तो यहीं पे है, बस बटन दबाने की देरी है। उधर दबाओ, इधर चालू। रोना, रूठना, उदास होना, नाराज होना, मुझे ऐसा क्यों कहा, हम तो कितने अच्छे हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा ऐसा कहते हैं, कितने खराब लोग हैं। कल से सेंटर दिए आएंगे बंद, घर पे ही मुरली पढ़ेंगे। एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करनी है। छुई मुई नहीं बनना है, यहां तो तपना है, सहन करना है। कहा ना बाबा ने, सहन करना और समाना दो शक्तियां। ये नहीं होगी तो व्यर्थ, ये नहीं होगी तो क्रोध, ईर्ष्या, जलसी। स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, अप्रभावित उल्टा घड़ा भव। जो जितना अधिक सेंसिटिव रहता है उसके लिए अध्यात्म का मार्ग उतना कठिन है। आधी मृत्यु HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटीज, वो यहां नहीं चल सकते ज्यादा समय। यहां तो सिक सिक झुक झुक मरमर, यहां तो ओखली में सर्दियां है तो मुसलों से क्या डर। बहुत सहना है, छोटा सा ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने जाता है, उसकी झोली फाड़ देते हैं लोग, निंदा करते हैं उसकी, सन्यासी का पुत्र है, सन्यासी का पुत्र है। रोते रोते माँ के पास आता है, कहता है, माँ कहती है क्या हुआ, वो कुछ नहीं बोलता है, झोली फटी हुई है, लोगों ने अपमान किया है छोटे से बालक का। अपनी माँ से पूछता है, माँ सहन भी कितना करे। माँ कहती है, समाधान निचित्त से सहन करना भी तपश्चर्या ही है। आज की मुरली में बहुत अच्छा वाक्य है, वो जाने और बाप जाने, ड्रामा जाने और बाप जाने, उस व्यक्ति का क्या हिसाब है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है, बाप जाने और ड्रामा जाने। हम तो दुख नहीं देते, वो दुख दे रहा है, उसका हिसाब बाप के पास है। और कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। एनर्जी शील्ड। अगला फोकस। जितना हम स्वदर्शन में रहेंगे उतना एकाग्र हो सकेंगे। मुरली सभी पढ़ते हैं परंतु उसका सार निकालने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता। जितनी अधिक एकाग्रता होगी, 10 बार 20 बार पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको एक ही बार पढ़ लिया फोकस्ड, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास रखा है। कैसे? कागज को रख दो, अगर धूप में जलता थोड़ी है, पर जब फोकस्ड किरणें आती है तो जलने लगता है। उसी तरह मन जितना फोकस्ड होगा, मन जितना व्यर्थ से मुक्त है, किसने क्या किया, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इस बहन ने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, व्हाट इज दैट टू यू? हमें क्या करना है किसी से? हमारे अपने जीवन के ही इतनी सारी समस्या है जो सॉल्व नहीं हो रही है। हमारे सबसे बड़े शत्रु हमारे ही भीतर हमारे अपने संस्कार है, दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। हमारे भीतर एक संस्कार है जो सुबह जब 3 बजे उठते हैं तो कहता है कि नहीं अभी टाइम है, थोड़ा और सो जाओ, यही शत्रु है। अमृत वेला, माया की सुनाई हुई लोरी का नाम है सुस्ती। जागो, यह समय है जागरण का। तस्मात जागृत जागृत। स्वामी विवेकानंद के जीवन में उदाहरण बताते हैं, श्री रामकृष्ण की मृत्यु हो गई, उसके बाद में वो सारे जो 12 लोग थे शिष्य असहाय हो गए, पता नहीं चल रहा है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक घर लेते हैं कलकत्ता और दक्षिणेश्वर के बीच, जो कि खंडहर है, जहां पर सांप और लोगों का कहना है भूत प्रेत है, वहां वो सारे तपस्वी सन्यासी 12 लोग रहते हैं। और वहां की दिनचर्या का वर्णन अमेरिका के एक स्पीच में किया गया। We used to get up early in the morning at 3 o'clock and we were sunk in meditation till 4 p.m., 3 p.m. in the afternoon. हम सुबह सुबह उठ जाते थे सबके सब, सुबह 3 बजे से चालू करते थे जप और ध्यान, 3 बज जाता था, दोपहर के 4 बज जाते थे, उठने की इच्छा ही नहीं होती थी। जब उनका एक साथी था जो भोजन की व्यवस्था करता था, वो पकड़ के सबको लेके जाता था। ऐसी तप की आग थी, संसार का कुछ चाहिए ही नहीं, धधकता वैराग्य, नथिंग मीन्स नथिंग, सब व्यर्थ है, ये पैसे मिट्टी है, न पद चाहिए न पोजीशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। I hate this world, this dream, this nightmare. मुझे यह संसार नहीं चाहिए, दुस्वप्न है, with its fair faces and false hearts. ऊपर से दिल बहुत गोरे गोरे है, अंदर से खोटे है, with its howling righteousness on the surface and utter hollowness within. ऊपर से बहुत दिखावा है, अंदर से खोखलापन है, with its churches and blackguardism, with its chicanery, with its sanctified shopkeeping. व्यापार चल रहा है यहां पर, रिश्ते क्या है, व्यापार है, शॉपकीपिंग है। कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता? आई लव यू, यू लव मी। इधर प्यार की कामना है, उधर वासना है, क्या ये प्रेम है? मन एकाग्र हो जाए। वह एकाग्र तब होगा जब मन में विरक्ति का भाव होगा संसार के प्रति। तुम वनवाह में हो, तुम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे। जो संसार के लिए प्राप्ति है तुम्हारे लिए अप्राप्ति है, और तुम्हारे लिए जो प्राप्ति है संसार उसे क्या कहता है? अप्राप्ति। टाइम वेस्ट कर रहे हो ना यहाँ आकर। संसार के लोग तो यही कहेंगे, 3 दिन में कितना पैसा कमा सकते हो उधर, जो यहाँ बैठे हैं, जो बिजनेस में होंगे उनके लिए। अगला, प्रभु प्रेम। जितनी अंतर्मुखी अवस्था होगी उतना परमात्म प्रेम जागेगा, जितना बाह्यमुखी होंगे व्यक्तियों से अटैचमेंट होगा, ये भाई अच्छा लगेगा, वो बहन अच्छी लगेगी, स्पेशल ब्रदर, स्पेशल सिस्टर, स्पेशल राखी, स्पेशल टोली। अगला, हीलिंग। हीलिंग जो है, घाव है, वो कैसे हील होंगे? 10 साल पहले किसी ने हर्ट किया, आज तक भूले नहीं है उसको, ना ही उसको माफ किया है। रोज मिलता है वो, अच्छे से बातचीत करते हैं, दिन भर उसी के साथ है, परंतु भीतर गांठ बंधी है, अंत मन में गांठे ही गांठे। हम बीमार थे, देखने नहीं आया था, भूले नहीं है, भूलेंगे नहीं। पैसे मांगे थे, दिए नहीं, भूले नहीं है। कौन क्या दे सकता है, भिखारियों का मेला है। हीलिंग करनी है भीतर, हर योग का सेशन हीलिंग सेशन हो। जब तक यहां है, यहां से जाने से पहले पूरा स्वस्थ होकर जाने, मन मानसिक सभी रोगों से मुक्त। भीतर भय है, भीतर डर है, कैसा डर कैसा भय, भगवान ने हाथ थामा है, भगवान साथी है, जीवन उसको सौंपा है, फिर भी क्यों भय, क्यों रात भर नींद नहीं आती है, क्यों नींद की गोलियां खानी पड़ती है, क्यों अचानक नींद खुलती है और धड़धड़ 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 घबराहट आवाजें सुनाई देती है, अलग अलग विचित्र विचित्र, क्यों? काम करना बाकी है, इसलिए बार बार कह रहे हैं, जब तक इस पावन भूमि में है, अपने ध्यान को बाहर से हटा देना है। बाहर सब कुछ होते रहेगा, भोजन होते रहेगा, सौगातें मिलती रहेगी, अनाउंसमेंट होती रहेगी, बहुत सारी चीजें होती रहेगी, सब होते रहने दो, पर भीतर निरंतर एक प्रवाह धुन, मुझे स्थिर होना है। अगला, इनसाइट। एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, जितना भीतर जाएंगे चीजें वही है, परंतु एक नया दृष्टिकोण से उसे देखेंगे। परिस्थिति वही है, पर अभी दूर आ गए हैं, ये घर था आपका, आप यहां हो, ऊंचाई पर हो, यहां से जब उसी परिस्थिति को देखते हैं तो एक नया डायमेंशन दिखाई देता है, एक नया आयाम जो वहां बैठ के नहीं दिख रहा था, और यहां एक संगठित ऊर्जा चल रही है। योग का बना बनाया वातावरण है, भट्टियों के ग्रुप आ रहे जा रहे, ज्वाला भवन में बैठे हो। आंख प्रकट करनी है, लगन में मगन, कुछ अच्छा नहीं लगता, अपनी ही आवाज से वैराग आ जाए, अपनी ही आवाज से उब जाए, अर्थात मौन। कोई एक लाइन ले लो, कोई एक वाक्य ले लो, चाहे किसी क्लास का या मुरली का, उसे एक लाइन को पकड़ो और उसकी गहराई में जाओ। कोई एक शब्द ले लो, उसकी गहराई में जाओ। सुबह की मुरली पवित्रता, दृष्टि वृत्ति कृति, सुबह की मुरली पवित्रता, अर्थात हर चीज में पवित्रता, संसार में संसार संस्कार में, वो है व्रत। एक व्रत लिया है कि चारों का लिया है, एक जन्म का लिया है कि 21 जन्म को लिया है, कच्चा लिया है या पक्का लिया है, बाबा ने प्रश्न पूछा है, कैसा लिया है सबने, ऐसे करो ऐसे। अब ये दूसरी अंगुली ऐसे करो, सच्ची मुच्ची वाला व्रत, कौन सा वाला, सच्ची मुच्ची वाला, बोलो एक बार, सच्ची मुच्ची वाला व्रत लेना है, पक्का एकदम, पक्के में पक्का। व्रत, संकल्प, अगला, जजमेंट से हमें फ्री हो जाना है। जितना हम भीतर जाएंगे हमें दूसरों को जज करने की जरूरत नहीं, ये अच्छा है कि बुरा है, इसने अच्छा किया कि बुरा किया, ये षड्यंत्र करता है, ये अन्याय करता है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, यहां अन्याय हो रहा है, जन जन की अधूरी कहानियां पूरी हो रही है, जन जन के कर्ज चुकतू हो रहे हैं, जन जन के पापों का हिसाब हो रहा है, हमें कैसे पता क्या चल रहा है, हमें कैसे पता हमने क्या किया है। अगला, कर्म का दर्शन, मॉनिटरिंग ऑफ कर्मा। जितना भीतर जाएंगे हम अपने कर्मों को मॉनिटर करेंगे, ऑडिट कर सकते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि ये जो संबंध निभाया एक व्यक्ति से वो वेस्ट था, स्टॉप इट। निष्कर्ष पर पहुंचना है, अब तक जो अमृत वेला किया उसमें शक्ति तो भरी नहीं, अब भरूंगा। निष्कर्ष पर पहुंचना है, अब तक जो चिल्ला रहा था पवित्र पवित्र पवित्र, वो पवित्रता पवित्रता थी ही नहीं, उसमें तो कितनी लीकेजेस थी, जिसे प्रेम 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 कहते वो प्रेम कभी था ही नहीं, वासना का ही मुखौटा था वो। अगला, लाइटनेस। जितना भीतर जाएंगे हल्कापन आते जाएगा। 10 साल से बोझ लेके घूम रहे, अदृश्य बोझ, संबंध का, सेवा का, लड़खड़ाते पुरुषार्थी का, उतार दो। बाबा ने कहा है अब तुम्हारे पुरुषार्थ की भी चिंता बाप पर छोड़ दो। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है अपने पुरुषार्थ की चिंता को बाप के हवाले कर दो। दैट लेवल ऑफ सरेंडर। अगला, निर्विकारिता। जितना भीतर जाएंगे निर्विकारिता, निराकारी अवस्था आएगी। अगला, जितना भीतर जाएंगे प्यूरिटी मेंटेनेंस होगा। एक होता है प्यूरिटी का व्रत और प्यूरिटी पालन करना, एक होता है प्यूरिटी को मेंटेन करके रखना। कितना दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष, संपूर्ण जीवन। एक एक ब्रह्मचर्य की ईंट को मजबूत करना होगा, तब यह भवन बनेगा। अगला, क्वाइट्यूड, शांति। जितना भीतर जाएंगे मन शांत होगा, नहीं तो कोर्स कराने वाले जिनको कोर्स करा रहे उससे ज्यादा अशांत है, ऐसा क्यों। अगला, रियलाइजेशन। अगर गहरी अनुभूति चाहिए तो गहरे में उतरना होगा, ऊपर ऊपर से सफाई हो जाएगी। किसी ने घर की सफाई कर दी ऊपर ऊपर से, पर भीतर अंदर मैल है, किसी कोने में कचरा है, तहखाना है, मन हमारा एक तहखाने जैसा अंधकार है जिसमें जिसकी सफाई करनी है। अगला, सोल कॉन्शियस विजन। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, स्वदर्शन योग में रहेंगे, उतना हम दूसरों को आत्मा देख सकेंगे। नहीं तो हमेशा ध्यान किसी के चेहरे पर जाता है, कोई सुंदर असुंदर काला गोरा। और अंतिम, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन इतना आसान नहीं है, कि कुछ पढ़ लिया, सुन लिया, कोई पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो कर लिया, उसे हो जाए। परिवर्तन प्रेम और योग और अनुभव से आता है। एक भी अनुभव हो गया तो आ जाएगा। हमें याद है जब हम पहली बार मधुबन आए थे और हॉस्पिटल के कमरे में बैठे थे, जो मेडिटेशन कमरा है, और एक गीत बजा। हमें कुछ भी पता नहीं था ये क्या है, कैसा है, कुछ है। जस्ट बैठे और एक गीत बजा, उसके कुछ ही लाइन बजी थी, शिव बाबा तेरी याद में हम खो गए। वो गीत के शब्द ऐसे लगे जैसे यहां किसी ने, जैसे कोई भाला हिल गए। देखो देखो छूट गए, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। बहुत पुराना गीत है। वो एक सेकंड का अनुभव था बस, ओनली वन सेकंड, बट बहुत स्ट्रांग, बहुत शक्तिशाली। और वो अज्ञात क्षणों में हो जाते अपने आप, परंतु वो भूमि वैराग्य की थी, तप की थी, तो सभी स्थिर बैठेंगे एकाग्र होकर। पेन पेंसिल डायरी सब कुछ बाजू में, शांत मन, अव्यक्त वायुमंडल, कुछ पल के लिए आंखें बंद, और अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा को देखेंगे। होश में थे या बेहोश थे, संतुलन कैसा था जीवन में, संयम कितना था, आसक्त थे या अनासक्त थे, हमेशा प्रभावित होते रहे दूसरों से या निर्लिप्त थे। मुरली सुनते समय, पढ़ते समय एकाग्रता कैसी थी, अब तक जीवन में बाबा के प्यार का क्या अनुभव रहा। कौन से घाव भीतर है जिन्हें अभी तक हम भूल नहीं पाए। एक नई अंतर्दृष्टि, मुझे किसी को जज नहीं करना, अपने ही कर्मों को देखेंगे। कौन सा बोझ सिर पर लेके घूम रहा हूं। मन साफ कितना हुआ है, निर्विकारी स्थिति कितनी आई है। अपने मूल ओरिजिनल संस्कार में कितना समय रहता हूं। ब्रह्मचर्य कैसा है, अब तक के जीवन में गहरी अनुभूतियां कब कब हुई। 10 साल पहले जो मैं था, 5 साल पहले जो मैं था, 1 साल पहले जो मैं था और आज जो हूं, आगे हूं या पीछे। स्वयं से बातें, आंखें खोलेंगे और बाबा को देखते हुए अपना सर्वस्व उसके सामने अर्पित कर देंगे। बाबा कुर्बान कुर्बान कुर्बान, अपने ही मन में 3 बार ये शब्द रिपीट करेंगे। मेरा सर्वस्व तेरे लिए, मेरे पुरुषार्थ की चिंता भी मैं तुमको सौंपता हूं। शांति।
मेरा बाबा।